मैं 11 साल का था और मैंने उससे पहले सेक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा था तो और मैंने सीधे हार्ड कोर पॉर्न देखी तो मेरे को याद है अच्छे से कि मेरे को बहुत सारी फीलिंग्स हुई थी, शॉक, सरप्राइज़, और मुझे ये भी लगा था कि यार जो भी ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे और देखना है।
मतलब चीज़ था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसको देखने से। मैं बस चाहता था कि मैं इसे देखता रहूँ। मेरे को अच्छा सा लग रहा था लेकिन मेरे को एकदम से डर भी लग रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत नया था मेरे लिए। तो मैं बताने से तो मतलब क्या थी।
A lot of questions went in my mind. I was thinking,
मेरे दिमाग में बहुत से सवाल थे। क्या मेरे माँ बाप ऐसे करते हैं? मेरे दोस्त ऐसे करते हैं? क्या ये नॉर्मल है?
बहुत से भारतीय नौजवानों को यौन संबंध के बारे में पहली जानकारी पॉर्न देखकर मिलती है। पॉर्न सेक्स के बारे में कुलबुलाते सवालों को सुलझा सकता है पर दिमाग को उलझा भी सकता है, खासतौर पर तब जब इंटरनेट की दुनिया में प्रोफेशनल तरीके से बनाए पॉर्न वीडियो, वेब कैमरा से छुपकर बनाए वीडियो, बच्चों के साथ पॉर्न, MMS और बलात्कार की वीडियो तक उपलब्ध हैं।
रेप वीडियोस और सेक्सुअली अब्यूसिव वीडियोस पॉर्न में बड़े ही पॉपुलर हैं। मतलब आपको इनको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉर्न सर्च करिए और कुछ ही क्लिक्स के अंदर आप वीडियोस देख रहे होंगे जो रेप से कनेक्टेड होंगे और सेक्सुअल अब्यूज से कनेक्टेड होंगे।
सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट पैक्स और सोशल मीडिया की वजह से ऐसे वीडियो अचानक देश भर में देखे जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि भारत के रूढ़िवादी समाज के लिए ये बदलाव कुछ ज्यादा ही तेजी से आया है और इस वजह से औरतों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। वहीं कुछ कहते हैं कि ये औरतों को वस्तु की नज़र से देखने के चलन को बढ़ावा दे रहा है और उनके खिलाफ हिंसा को सहज बना रहा है।
वुमेन को या लड़कियों को कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग का और एक वस्तु के रूप में ज्यादा देखते हैं, चाहे हम जितने हाईफाई हो जाए। लड़की की इज्जत का थोड़ा भी लोगों को सेंस होता और उसके लिए रिस्पेक्ट होता तो लोग थाने में जाते, ना कि वायरल करते।
पर खुद पॉर्न देखने वाले इस बारे में क्या सोचते हैं? महिलाओं के मुद्दों पर काम करते हुए मैंने कई औरतों से बात की है जो अत्याचार, भेदभाव और हिंसा का शिकार हुई। लेकिन इस बार मैं दूसरा पहलू समझना चाहती हूँ, मर्दों से जानना चाहती हूँ कि पॉर्न के खिलाफ भारत की लड़ाई में वो खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं, और जानना चाहती हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहले मुझे एक गाइड चाहिए, एक मर्द जो ये जानता हो कि नौजवान किस तरह का पॉर्न देख रहे हैं और उसका उन पर क्या असर हो रहा है।
मेरा नाम आदित्य गौतम है और मैं दिल्ली के पास के शहर नोएडा में बड़ा हुआ।
आदित्य का कद लंबा है और वो दाढ़ी रखते हैं, फिर भी 34 साल की अपनी उम्र से कुछ कम ही लगते हैं।
मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। ग्रेजुएशन में मैंने पहले एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स ज्वाइन किया जो मैंने एक ही साल में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को कंप्यूटर में सिर्फ गेम्स खेलने ही पसंद हैं। फिर उसके बाद मैंने बाकी पढ़ाई करी।
आखिरकार आदित्य गेम्स छोड़ किताब लिखने लगे, महीनों शोध किया, देश भर में विशेषज्ञों और नौजवानों से बात की, पर उनकी किताब पॉर्निस्तान, हाउ टू सर्वाइव द पॉर्न एपिडेमिक इन इंडिया, यानी पॉर्न की महामारी से भारत में कैसे बचें, उनके पॉर्न के अपने अनुभव भी समेटे हुए हैं।
पॉर्न का मेरे पे काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा इफेक्ट होने लगा था। मैं लेट टीन ईयर्स में, अर्ली ट्वेंटीज़ में बहुत पॉर्न कंज्यूम कर रहा था। पॉर्न मेरे लिए इनफैक्ट सबसे बड़ा एक स्ट्रेस रिलीज का ज़रिया हो गया था, सबसे बड़ा रिलैक्स करने का ज़रिया हो गया था। मेरा कभी स्ट्रेसफुल दिन होता था, मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो मैं रात को आता था, पॉर्न देखता था और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मास्टरबेट करना भी मेरे लिए एक सेकेंडरी चीज़ हो गई थी। मैं पॉर्न देखता था क्योंकि मेरे को पॉर्न देखने में मज़ा आता था। जब मैं बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहा था जैसे मैंने पिछली रात को बहुत ज़्यादा पॉर्न देखी है, उस दिन सुबह बहुत पॉर्न देखी, तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली सेक्सुअल एक्ट का टेप चलता रहता था। मैं किसी भी फीमेल से मिलता था तो मेरे दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके, जो मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि ये नॉर्मल है, कि सर लड़का, मैं जवान हूँ, लड़का हूँ तो आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल, तो मेरे को उस समय सारी नॉर्मल लगता था।
पर फिर एक मोड़ आया जिसने सब बदल दिया।
लगभग 3-4 साल पहले मैं बड़ी एक अट्रैक्टिव लड़की को डेट कर रहा था और मुझे पता था वो अट्रैक्टिव है क्योंकि मुझको अट्रैक्टिव लगती थी और आसपास लोगों को, दोस्तों को भी बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। पर हुआ क्या, कुछ टाइम बाद मेरे को उससे अराउज़ल होना बंद हो गया। पर मैं जब पॉर्न देखता था तो मैं बड़ी आसानी से अराउज़ हो जाता था। तब मुझे लगा कि यार कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैं इस जीती जाती बड़ी अट्रैक्टिव लड़की से अराउज़ नहीं हो पा रहा हूँ, पर ये स्क्रीन में एक्टर्स को देख के अराउज़ हो पा रहा हूँ। बहुत सीरियस कोई गड़बड़ है।
आदित्य इस तरह के बर्ताव को जन्म देने वाली मानसिकता टटोलना चाहते थे और ये तलाश उन्हें डॉक्टर श्वेतांक बंसल के पास ले गई।
Is this it?
Yes, this is it. This is Shwetank, Dr. Shwetank Bansal's clinic.
Okay.
डॉक्टर बंसल सेक्सोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं। आजकल कई नौजवान पॉर्न देखकर यौन संबंध के बारे में समझ बना रहे हैं, तो उनसे पूछा क्या ये सही है।
Pornography as a form of sex education really fails because it builds up.
पॉर्न सेक्स एजुकेशन का काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत अव्यवहारिक उम्मीदें पैदा कर देती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पॉर्न देखकर यौन संबंधों के बारे में सीखना ठीक उसी तरह है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म देखकर ड्राइविंग सीखना। ये सच्चे अनुभव की बहुत ही गलत समझ बना देता है।
And do these young men when they come to you, do they talk about these things? Like, do they get into those details?
मैंने डॉक्टर बंसल से पूछा कि जो नौजवान आपसे बात करने आते हैं, क्या वो इन गलत उम्मीदों के असर के बारे में भी खुलकर बोलते हैं कि उनका असली अनुभव अलग या बुरा था?
Oh, all the time. Expectations from themselves, expectations from the partner.
बहुत बताते हैं, खुद से उम्मीदें, पार्टनर से उम्मीदें, सेक्स से उम्मीदें, ये कुछ और ही है। आप मानिए कि आप सुपर हीरो की फिल्म देख रहे हैं तो उसका वैसा असर नहीं होता, क्योंकि हम अपने आसपास लोगों को धरती पर चलते हुए देखते हैं तो समझते हैं कि वो उड़ नहीं सकते। पर बहुत लोगों को सेक्स की पहली झलक पॉर्न से मिलती है, तो वो हर चीज की तुलना उसी से करते हैं। बहुत लोग घबराहट के साथ आते हैं, उनमें अवसाद के लक्षण भी दिखाई देते हैं।
डॉक्टर बंसल के मुताबिक ये समस्या बढ़ती ही जा रही है।
The consumption of porn in India, it's just exploded over the last decade.
पिछले दशक में तो पॉर्न देखने में मानो क्रांति सी आ गई है और उसी का नतीजा है कि पॉर्न देखने की उम्र गिरती चली गई है। अब 8-9 साल के बच्चे भी पॉर्न देख रहे हैं।
It's really young.
Yeah, that's true. And parents are often shocked by...
माँ बाप अक्सर सकते में आ जाते हैं, पर ये व्यापक है, बस एक बटन क्लिक करने की देर है।
इंटरनेट पर पॉर्न की जिस क्रांति की बात डॉक्टर बंसल कर रहे हैं वो सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से हुई है। पॉर्न हब, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट बताया जाता है, का दावा है कि उसकी वेबसाइट इस्तेमाल करने वालों में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत से ही आते हैं और भारत में लगभग हर कोई उनकी वेबसाइट मोबाइल पर ही देख रहा है।
मैं बीबीसी के साथ काम करती हूँ, मेरा नाम दिव्या है और हम यंग लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि वो पॉर्न देखते हैं, कितना देखते हैं, क्यों देखते हैं और अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि अब हम सब स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पॉकेट में लेके चलते हैं। तो आप सब लोग यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहे हो।
जॉनरा रफ सेक्स टाइप एंड फेवरेट काफ़ी है उसमें अच्छा हार्ड कोर मसाज एंड पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया था ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत चीज़ अंदर ही अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे थे मेरे को कि बाबा मैं देखता रहूँ इस चीज़ को। मैं बस चाहता था कि मैं इसे देखता रहूँ, मेरे को अच्छा सा लग रहा था लेकिन मेरे को एकदम से डर भी लग रहा था कि मैं
हफ्ते में कितने दिन देखते हो, कितने घंटे देखते हो?
हफ्ते में 2-3 बार ही ऐसे, और एक मतलब जब देखता हूँ तो फिर 2 वीडियोज़ मिनिमम ऐसे देख लेता हूँ।
कहाँ देखते
हो? फ़ोन पे इंटेंस टाइप और हार्डकोर पॉर्न।
आदित्य के साथ मैं जिन लड़कों से मिली वो सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, पर एक बात जो मेरे जहन में रह गई वो ये कि इन सब की पसंद हार्डकोर पॉर्न थी, पर आदित्य इससे हैरान नहीं थे।
जब मैंने रिसर्च शुरू करी और ये मुझे पता लगा कि आजकल लोग बहुत हार्डकोर कंटेंट देख रहे हैं, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं खुद भी बहुत हार्डकोर कंटेंट देखता हूँ और मेरे आसपास के लोग और दोस्त भी बहुत हार्डकोर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। कोई रिपरकशन है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री रीड करनी है और किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा हमने क्या देखा। तो जब मैं हार्डकोर कंटेंट देख रहा था जो बहुत ही अब्यूजिव वीडियोस थे, फोर्स्ड वीडियोस थे, कुछ ऐसे वीडियोस थे जो बिल्कुल रेप वीडियोस जैसे ही थे, मेरे को देखने के बाद लगता था ओह माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या देख रहा हूँ। पर मैं अगली बार जब पॉर्न देखने बैठता था तो मैं फिर वैसे वीडियोस देखता था। मुझे एक्चुअली नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट के वीडियोस से अराउजल होना ही बंद हो गया था, मुझे एक्सट्रीम कॉन्टेंट ही देखना पड़ता था अराउजल के लिए।
पर मुद्दा सिर्फ हार्डकोर पॉर्न देखने का नहीं है, अब ऐसे वीडियो भी देखे जा रहे हैं जो बिना सहमति के बनाए गए हैं या पॉर्न के नाम पर हिंसा दिखाते हैं।
अगर आप इंडियन पॉर्न वेबसाइट पर जाएं या इंडियन पॉर्न कैटेगरी देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप की पोर्नोग्राफी है वो है हिडन कैमरा या फिर MMS या फ़ोन से शूट किए हुए पॉर्न वीडियोस, जिनमें ज़्यादातर लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि ये वीडियो शूट किए जा रहे हैं या फिर उनको ये नहीं पता होता है कि वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे पॉर्न वेबसाइट्स में। और फोर्स्ड वीडियोज़ और रेप वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में।
पिछले सालों में सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए यौन हिंसा के वीडियो बांटने जा रहे हैं। एक मुझे अपने फोन पर इसी साल अप्रैल में मिला। इसमें करीब दर्जन भर लड़के एक 16 साल की लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं अचंभित थी क्योंकि ये वीडियो मेरे पास पत्रकारों और समाज सेवियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप से आया। पॉर्न की कहानी की ये दूसरी कड़ी है जिसकी तहकीकात जरूरी है। हाल तक स्मार्टफोन और इंटरनेट ग्रामीण भारत की पहुंच से बाहर थे, पर अब ये बदल गया है। आदित्य को दिल्ली में छोड़ मैंने बिहार जाने का फैसला किया। यहीं पर वो वीडियो फिल्माया गया था। हरे घने खेतों के बीच ये एक कच्चा रास्ता है जहाँ मैं खड़ी हूँ। बिहार के जहानाबाद में ये कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लगा एक बिजली का खंबा जिसका नंबर उस वीडियो में भी दिख रहा था, उसके ज़रिए इस जगह की पहचान हो पाई। उस वीडियो में करीब दर्जन लड़के एक 16 साल की लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक सलवार कुर्ता पहना हुआ था। वो बहुत चिल्ला रही थी, मदद की भी अपील कर रही थी, उन्हें भैया कह रही थी कि शायद वो उसको बहन की तरह माने, लेकिन वो लड़के हंस रहे थे, उन्हें मज़ा आ रहा था। उनके हाथ हर जगह जा रहे थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में उस लड़की को धकेल रहे थे। करीब 10 मिनट का वो वीडियो देखना बहुत मुश्किल था और बहुत गुस्सा आया मुझे उस वक्त। उलझन हुई ये सोच के कि ये कैसे लड़के हैं, ये कौन लड़के हैं जो इस तरह की हरकत करना सही समझते हैं, उसका वीडियो बनाना सही समझते हैं और फिर उसको आपस में बांटना सही समझते हैं। उन्होंने इस वीडियो को इतना बांटा कि देश भर में बहुत हज़ारों लाखों लोगों ने इसे देखा, पुलिस तक पहुँचा और पुलिस ने फिर उन लोगों को, उन लड़कों को गिरफ्तार भी किया। मैं यहाँ बिहार आई हूँ जहानाबाद के उन गांवों में जाके ये मालूम करना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल क्यों हो रहा है। लड़कों के गांव में कोई भी हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। घबराहट सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। काफी मनाने के बाद गांव के एक पढ़े लिखे बुजुर्ग सुजॉय प्रसाद अपनी किराने की दुकान के अंदर हमसे बात करने को राजी हुए। वो मानते हैं कि वीडियो उनके पास भी पहुंचा था।
ये तो गलत हुआ है, समझ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें समाज का भी, समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है। पहले इंटरनेट वाले मोबाइल नहीं थे, इधर 2 साल से इंटरनेट वाला मोबाइल काफ़ी लोग हो गया है, हाथों हाथ हो गया है। इससे बच्चे बिगड़ भी रहे हैं और जो सही यूज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो बच्चे गांव में भैंस चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, उनको इंटरनेट के मोबाइल की क्या ज़रूरत है। चीज़ तो अच्छी ही है, बस 10% लोग हैं जो सही इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, बाकी तो सब ऐसे ही मूवी और गाने देखने के लिए।
सुजॉय को वो वीडियो व्हाट्सएप से मिला। ग्रामीण और शहरी भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, यानी दुनिया में भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है। इंटरनेट और सोशल मीडिया क्रांति से पहले लोग पॉर्न वीडियो के लिए छोटी दुकानों पर निर्भर थे, जहां 10-15 रुपए के लिए ऐसे वीडियो मिल जाते थे। पर हमें कई दुकानदारों ने बताया कि वो बिजनेस अब ठप हो गया है। पास के कस्बे के कुछ 15-16 साल के लड़कों ने भी इस चलन की तस्दीक की।
फेसबुक, व्हाट्सएप, थोड़ा यूट्यूब, ये सब देख लेते हैं, कोई आता है देख भी लेते हैं। ग्रुप व्रुप में व्हाट्सएप पर रहता है तो आता है तो देख लेते हैं। बहुत आ जाता है, लगभग में आ ही जाता है, वही 25-30 वीडियो आ ही जाता होगा। देसी भी रहता है, विदेशी भी रहते हैं।
एक और लड़का भी बताता है कि रेप वीडियो आए तो उसे मिल ही जाता है।
तो जब तक फोन में इंटरनेट नहीं आया, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था?
नहीं,
सबसे पहले फोन में ही किया। और सबसे पहले चीज क्या इस्तेमाल की?
सबसे पहले गेम ग्रुप में आता है, कुछ फनी वीडियो वगैरह रहता है तो कुछ ऐसे वीडियो रहता है, कहीं रेप वगैरह होता है तो सबका वीडियो आता है।
अच्छा,
और ये सारा कुछ हो रहा है ड्यू टू मोबाइल, मोबाइल से और बहुत सारा छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। जहानाबाद का भी है एक, आपका इधर दरभंगा साइड में भी था, ये 6-7 वीडियो लगातार आए थे, एक के बाद एक आए थे।
जाहिर है जहानाबाद का वीडियो सैकड़ों में एक था और इस चलन से बिहार की सांसद रंजीत रंजन परेशान हैं। बुलंद आवाज और बेखौफ ख्याल उन्हें सबसे अलग बनाते हैं।
तो मैं कहूँगी इसका रीज़न भी यही था कि लोगों ने उसको नेगेटिव वे में ज़्यादा लिया कि अच्छा इसने बनाया है तो मैं भी बनाता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ये वायरल इसलिए नहीं हो रहा था कि इसको आपको पुलिस को देना है, अगर लड़की की इज्जत का थोड़ा भी लोगों को सेंस होता और उसके लिए रिस्पेक्ट होता तो लोग थाने में जाते ना कि वायरल करते।
मैं सिर्फ लड़कियों के स्कूल प्रोजेक्ट कन्या बालिका विद्यालय आई हूँ। यहाँ 14 से 18 साल की लड़कियाँ पढ़ती हैं। स्कूल की इमारत बदहाल हालत में है, सामने के अहाते में घास उगी है जिसे लंबे समय से काटा नहीं गया और 2 शौचालय हैं पर उनमें पानी नहीं आता। मैं प्रिंसिपल रविंद्र कुमार से मिलती हूँ।
बताएं कि बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है सबसे पहले?
बायोलॉजी में 6 पर भी कुछ है पढ़ना, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, तो हेरिडिटी में सब बहुत सारी चीज है लड़की के बारे में।
भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने साल 2007 में पहली बार एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, पर कई माँ बाप ने इसे अश्लील बताते हुए विरोध किया और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। फिर 2 साल बाद साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA के साथ मिलकर ये दोबारा लाया गया। इसमें किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव, जेंडर और लैंगिकता के आधार पर बने मिथक और रूढ़िवादी विचार, शरीर कैसा होना चाहिए इस पर बातचीत, हिंसा, HIV संक्रमण, ड्रग्स इत्यादि मुद्दे शामिल हैं, पर उसे सब जगह ठीक से लागू नहीं किया जा सका। मसलन इस स्कूल में ही प्रिंसिपल ने इसके बारे में सुना तक नहीं है।
सेक्स एजुकेशन जैसी कोई चीज
नहीं है।
आप क्या लगता है कि इस तरह की चीज से उनको कोई मदद मिलेगी या ये सब घरों में ही समझाने वाली बातें?
बिल्कुल मदद मिलेगा, लड़की की इसकी जानकारी होना चाहिए और ये जानकारी की अभाव है। बहुत सा ऐसा है कि पिता नहीं बता सकते हैं, माँ बता सकते हैं, घर में भी माँ ऐसा है कि कम पढ़ी लिखी है वो भी लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो वो तो इसकी विद्यालय ही में होना चाहिए कि विद्यालय में कोई अगर मैडम बताते हैं या बाहरी टीम बताते हैं तो इसकी ज़्यादा जानकारी होगा इसकी।
बिहार से सांसद रंजीत रंजन के मुताबिक समस्या की जड़ है कि औरतों की तरफ समाज का रवैया नहीं बदल रहा।
एक मैं बात जरूर कहूंगी कि अभी तक हमारी जो सोच है, हम वुमेन को या लड़कियों को कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग का और एक वस्तु के रूप में ज़्यादा देखते हैं, चाहे हम जितने हाईफाई हो जाएं। आप एग्जाम्पल, मैंने पार्लियामेंट में भी वुमेन सेफ्टी पे चल रहा था तो मैंने कहा भैया लड़की को बचाने के लिए लड़का आएगा, ऐड भी आप वॉसी देते हो, तो हमारी मेंटालिटी ये है कि लड़की खुद नहीं बचेगी, लड़के ने ही आके बचाना है।
रंजीत के मुताबिक हिंसा के वीडियो उस पुरानी सोच को और ठोस करते हैं जिसके तहत ये माना जाता है कि औरतों की अपनी कोई पहचान नहीं है और आज़ादी से लिए उनके फैसलों की इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इन मुद्दों पर खुली बातचीत की कमी है जिस वजह से पीड़िताओं के लिए मदद के आयाम कम हैं। वो अक्सर शर्म और डर के बोझ तले चुप हो जाती हैं और वो चुप्पी घातक हो सकती है, जानलेवा भी, जैसे गीता के मामले में हुआ। 40 साल की गीता उत्तर प्रदेश के एक गांव में आशा वर्कर के तौर पर काम करती थी जब उनके बलात्कार का वीडियो व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो गया। अगले दिन गीता गांव के पास की एक सड़क पर मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। इससे पहले कि अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत जहर खाने से हुई।
आई थिंक सम ऑफ द पेन आई विल कैरी टू माय ग्रेव।
मुझे लगता है कि कुछ दर्द तो मेरे जाने के साथ ही मेरे दिल से निकलेगा, पर आज मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। जब मैंने शुरुआत की थी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा गुस्सा।
सुनीता कृष्णन खुद बलात्कार की पीड़ा झेल चुकी हैं। अब वो भारत में यौन हिंसा पर काम कर रही सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक प्रज्वला चलाती हैं।
Well, it all started in 2015 when I received 2 videos on WhatsApp.
इस सब की शुरुआत साल 2015 में हुई जब मुझे WhatsApp पर समाज सेवी द्वारा भेजे गए 2 वीडियो मिले। एक वीडियो में 8 लोग 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहे थे और दूसरे में एक लड़की का बलात्कार हो रहा था और एक लड़का जो शायद उसका बॉयफ्रेंड था उसे पीटा जा रहा था और कोई तीसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा था।
हैदराबाद की रहने वाली सुनीता ने 24 घंटों में शेम द रेपिस्ट यानी बलात्कारी को शर्मसार करो नाम से एक मुहिम शुरू कर दी और वीडियो में पीड़िता का चेहरा छिपाकर उन्हें पोस्ट करना शुरू कर दिया ताकि हिंसा करने वालों के चेहरे पहचाने जा सकें। पर महिलावादी आंदोलनकारियों ने ही उनकी मुहिम की आलोचना की क्योंकि उन्हें लगा इससे पीड़िता को नुकसान होगा। सुनीता ने मुहिम तो रोक दी पर लोगों ने उन्हें वीडियो भेजना बंद नहीं किया। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की मांग की। सुनीता का दावा है कि उन्हें सैकड़ों और वीडियो मिले हैं। कुछ मामलों में वो उन्हें हटवाने में कामयाब भी रहीं, पर सुनीता अच्छे से जानती हैं कि इंटरनेट से कुछ भी हमेशा के लिए हटा पाना नामुमकिन जैसा है।
One young girl told me that till I go to my grave, I will not be sure.
एक लड़की ने मुझे कहा कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, मुझे पक्के तौर से यकीन नहीं होगा कि जिस आदमी को मैं इस वक्त देख रही हूँ उसने मेरा वीडियो देखा है कि नहीं। उसके लिए ये चोट हमेशा के लिए है जो बलात्कार की किसी और पीड़िता को नहीं होगी क्योंकि उसका वीडियो नहीं बना। एक वक्त होता है जब दुख बहुत गहरा होता है, फिर आप उससे उबरते हैं और सोचते हैं कि आगे बढ़ जाना है, पर स्थिति में जब तक कि किसी के मोबाइल में वीडियो है तब तक आपका घाव हरा है।
कल इस विशेष पड़ताल का दूसरा भाग जिसमें आप सुनेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जो इन वीडियोस की पीड़िताओं की मदद कर रही है और जानेंगे पॉर्न के खिलाफ भारत की ये लड़ाई और कौन कौन कैसे लड़ रहे हैं।